October 19, 2006. Kartik evening class.
Sometimes, कभी कभी कोनो कोनो समय बंगाली में मेरा खुलू ध्वनि दीते पारे कोनो आपत्ति नहीं स्वयं पुरुषार्थ शिरोमणि ग्रंथकार श्री चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवत गीता आदि शास्त्रों के शास्त्रीय प्रमाणित द्वारा भक्ति की स्वतंत्रता और भक्ति स्वप्रकाशित है दिल धूपे ते स्थापन कर एखन प्रथम दृष्टि का उपसंहार कर रहे हैं। प्रथमे बोला हैया छे किसी परम स्वतंत्र महापुरुष की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। महतो के हृदय में विराजमान भक्ति ही उस कृपा का हेतु है। यदि मध्यमाधिकारी भक्ति का कारण है तो भक्ति की स्वतंत्रता की हानि नहीं हुई, क्योंकि भक्तों के हृदय में जो भक्ति है उसी से उसको कृपा होती है और उसी से भक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए भक्ति के द्वारा ही भक्ति होती है। भागवत में ऐसा कहा गया है स्मरंत स्मरयंतश्च मिथो अघौ भरम परिम भक्त्या संज्ञात्या भक्त्या विभ्र उत्पूर्णकं तनु। नव जोगेंद्र के अन्नतम श्री प्रबुद्ध जोगेंद्र महाराज नेमि के निकट कह रहे हैं, हे राजन, एक प्रकार साधन भक्ति थी आदिभूत प्रेमा भक्ति के द्वारा स्वयं हरि को स्मरण कर और दूसरों को स्मरण कराकर जात प्रेम भक्त रोमांचित और उद्भूत होते। जात प्रेम जाते हृदय से प्रेम उत्पन्न हुए छे एक रकम भक्तगण परस्पर जे रकम सनातन गोस्वामी देखा होले আপনি কেমন আছেন? অন্যান্য সব বিষয়ের কথা জিজ্ঞাসা না করে কৃষ্ণের কথা, গোপীগণের কথা পরস্পর বলে আর পুলকিত হচ্ছেন, রোমাঞ্চিত হচ্ছেন, অন্যকেও রোমাঞ্চিত আর পুলকিত করছেন। কর্ম যোগ জ্ঞান আদি সাধন মে সাধন আর সাধ্য ভিন্ন হ্যাঁ। जैसे ज्ञान का साधन मुक्ति है, योग का वो भी ना तो परमात्मा में मिल जाना है, किंतु कर्म योग का जाग जग इत्यादि साधन है और स्वर्ग की प्राप्ति साध्य है। ज्ञानियों का सम दम तितिक्षा निधि ध्यासन आदि साधन है और ब्रह्म सायुज्य साध्य है। योगियों का जम नियम आसन प्राणायाम साधन है, परमात्मा साहित्य उनका साध्य है। ये सब साधक साधक सिद्धि के निकट जितने ही अग्रसर होते हैं उनका साधन कम हो जाता है और अंत में साधन का बोझ मस्तक से हटा करके सिद्धि में रम जाते हैं, साधन अब नहीं रह जाते। इसलिए उनका साधन और सिद्धि दोनों पृथक पृथक, किंतु भक्ति में नहीं। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, ये भक्ति के तीन स्टेज है, किंतु है भक्ति ही जो तारतम्य है भक्ति का। साधन भक्ति साधन होना, किंतु है भक्ति। भाव भक्ति प्रेमा भक्ति का अभाव और प्रेम
आस्ते आस्ते आस्ते
तारतम्य की अवस्था है। पूर्व भक्ति ही क्रमशः भक्ति का हेतु हुआ था, पूर्व ये भक्ति से क्रमशः भक्ति हेतु हुआ। इसलिए भक्त साधक प्रेम भक्ति को जितना ही अग्रसर होता है उसका साधन और बढ़ता जाता है, समाप्त नहीं होता। यदि कोई एक आदमी भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर तो श्रवण कीर्तन बंद नहीं होगा, चलता रहेगा, क्योंकि साधन की अवस्था में जिसका स्वादन तरल होता है भाव और प्रेमावस्था में उसका स्वादन गाढ़ होता है। अभी साधन इंद्रियों से होता है, कृति साध भावा ससाधन बिना नित्य सिद्धस्य प्राकट्य दिशा। वो भाव तो नित्य है, कहीं से लाना नहीं है, कपड़ा है इसको साफ कर दिया, इसलिए हमारे अंदर में है, किंतु साधन के द्वारा उसको प्रकट किया जाता है। किंतु सब साधनों को साधन नहीं कहा जाए। यदि भाव को प्रकट करने के लिए साधन भक्ति इंद्रियों के लिए की जाती है तब तो साधन भक्ति है, साध्य भावा, जिससे कि भाव भक्ति प्रकटित हो। अन्यथा भाव को उद्देश्य करके यदि साधन नहीं होगा वो साधन नहीं। नरोत्तम ठाकुर तिनी बोलते हैं पाकिले से प्रेम भक्ति और पक्के साधन रीत भक्ति लक्षण तत्व सा। जैसे एक ही आम कच्चा बनता है टॉ, खट्टा होता है आम कच्चा आम, और परिपक्व अवस्था थे सुस्वादु मिष्टी हो जाए। वही प्रकार प्रेम के बहुत से स्तर हैं। प्रेम क्रमशः परिपक्व होकर के स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव मां भाव ये नाम धर्म करता है। प्रेम विकास के विभिन्न स्तर प्रेम की परिणति है। प्रेम ही क्रमशः शांत या स्वादिष्ट होकर शांत माने घनी भोग होकर के पूर्ववार्था का त्याग नहीं करता, बल्कि स्नेह मान प्रणय हुआ। जैसे प्रेम परिपक्व होकर के स्नेह हुआ, किंतु प्रेम नष्ट हो गया ऐसा नहीं, प्रेम रहेगा। और सब में ऐसा नहीं देखा जाता, प्रेम का सर्वोच्च स्थान महाभाव। महाभाव की केवल ब्रज गोपियों में ही स्थिति है, महाभाव ब्रज की गोपियों के अतिरिक्त कहीं नहीं है। यहां तक कि रुक्मिणी सप्तभामा ने भी नहीं देखा। जिस भक्ति में कृष्ण को सुख देने की कामना को छोड़कर कोई कामना नहीं है, वही उत्तमा भक्ति है। वो तीन प्रकार की होती है, साधन भक्ति, भाव भक्ति। यहां एक और बात विचारणी है, और एक जिनिस विचारणी है। सांख्य मत के अनुसार, सांख्य मतानुसार उपादान कारण अपनी पूर्व अवस्था को त्याग करके कार्य रूप में बदलता है। ऐसे नहीं समझना है, उदाहरण के साथ समझ। जैसे दूध, उसमें क्या देते हैं, जाम उसमें दे देते हैं, दही या कुछ, तो अब दूध नहीं रह जाता, वो अब दही हो जाता है, दूध नहीं रहता। फिर दही को दूध नहीं बना सकते, दही में फिर दूध नहीं रहता। उसी प्रकार भाव भक्ति भी जब प्रेमा भक्ति के रूप में बदलती है तो क्या अपनी पूर्व अवस्था को प्रत्याग कर देती है। जैसे भाव भक्ति यदि वो प्रेमा भक्ति हुई परिपक्व होकर के, तो क्या भाव भक्ति समाप्त हो जाएगी? नहीं, उस समय भाव भक्ति भी रहेगी और उधर प्रेम भी होगा। यही वैशिष्ट्य है। रति जब स्नेह के रूप में परिणित होती है, क्या रति की पूर्वावस्था समाप्त हो जाती है? नहीं। उसी प्रकार के इस उत्तर शिलास रूप गोस्वामी ने दिया सिद्धांत, कहते हैं रति कृष्ण की लादनी शक्ति है। रति अथवा भाव क्या है? विशुद्ध सत्व, विद्युशुद्ध सत्व। क्या रगात्मिक भक्तों के हृदय में जो श्री कृष्ण सेवा की परिपाटी है, वो जब भक्तों के अंदर में संक्रमित होती है, आती है, तब विशुद्ध सत्व उसको कहते हैं। तरती कृष्ण की लाडली शक्ति विशेष है, वह कृष्ण की अचिंत शक्ति से पूर्व अवस्था का त्याग किए बिना, पूर्व अवस्था भाव का भाव रहता ही है, इधर प्रेम भी हुआ, उधर स्नेह मान प्रणय होता चला जाता है, पूर्व अवस्था की रहता है। श्रवण कीर्तन इत्यादि अंग जैसे साधन भक्ति में है, साधन भक्ति के समय में श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाप सेवन सब कुछ रहता है। और यदि गोपी का भाव आ गया, गोलोक वैकुंठ में चला गया, तो श्रवण कीर्तन स्मरण रहेगा कि नहीं? वहां पर वैसे ही भाव भक्ति में प्रेम भक्ति भी रहती है। अतः भाव भक्ति पूर्व अवस्था का त्याग किए बिना ही प्रेम भक्ति में परिणाम। ट्रांसलेशन,
taking evidence from especially the Srimad Bhagavatam or the Srimad Bhagavad Gita is now proving that bhakti is not only the topmost goal, but she is also supremely independent and self-manifested. Therefore, by hearing from the independent Mahapurush, the Uttam Bhagavad, then bhakti appears in the heart. But also by the association of the Madhyam Adhikari, then bhakti comes. So is it a question of bhakti not being independent? No. Because the bhakti present in the heart of devotee, that simply goes to the heart of the sadhak. Therefore, in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, in the conversations of the Navayogendras with Sundami Maharaj, then they said, Smaranto Smarayantischa. The devotees in association, they remember Krishna and they cause others to remember Krishna. Bhakti Sumjatiya Bhakti. Therefore, bhakti is the cause of bhakti. So in Sadhu Sangha, then sometimes the devotees' voice choke, their hair stand on end, and tears pour from their eyes. But the idea of bhakti is not caused by anything else. Bhakti is only caused by bhakti. How Sri Rupa and Sanatana Goswami, when they would meet, they would not discuss any other topic, how are you, etc. But simply they would discuss Krishna Katha, and especially Gopi Katha. They would forget if it was day or night, and all ecstatic symptoms would appear in their bodies. Therefore, bhakti is not caused by anything. Bhakti is caused only by bhakti. Therefore, her independence and self-illumination qualities remain. But in other types of sadhana, this is not seen. In the jnanis, they adopt the sadhana of meditation. But their goal is brahma sayuj, mukti. The yogis adopt yam, niyam, pranayam, dhyan, atyahara, etc. And their goal, but their goal is paramatma sayuja, to mix with paramatma. The karma yogis adopt different limbs, angas of karma yoga, and their attainment is the heavenly planet, or swarga. Therefore, in jnana, yoga, and karma, it is seen that their practice and their goal is different. For example, jnanis after achieving mukti, they leave aside jnana sadhana. The yogis. Therefore, once they achieve their sadhya, then they leave their sadhya. As much as they approach their goal, that much they abandon their sadhana. But this is not the case in bhakti, because the sadhana, the practice, and the goal are not different things. Therefore, that Uttam bhakti is seen in three stages: sadhana bhakti, bhava bhakti, and prema bhakti. That bhava bhakti is a semblance or a fraction of that prema bhakti, but all three are still bhakti. It is simply a matter of one maturing into the next stage. Sadhana bhakti matures into bhava bhakti matures into prem. Therefore, even upon the achievement of perfection in bhakti, still the sadhana of bhakti, Shravan, Kirtan, Vishnu, Smaranam, Pada, Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, remains. It is simply a matter of the taste increasing. Therefore, Sri Rupa Goswami has said, what is sadhan? Kriti sadhyat bhavatsa sadhibhav, gichisidasya bhavasya vikatam vidhi sadhyatam. Sri Rupa Goswami has described what is sadhan bhakti. Sadhan bhakti is endeavor by these senses to achieve sadhibhav, or the eternal mood present eternally in the heart of the jivatma. Therefore, an example is given, just like if something is dirty, if I clean it by a cloth, then what is inside manifests by cleaning. By sadhana bhakti, that sadhya, that goal, manifests. Therefore, everything is not sadhana bhakti. Only if sadhana bhakti is aimed towards the achievement of bhav, then it can be called sadhana bhakti, otherwise not. Therefore that is called satya bhav, eternally present, eternally perfected mood within the heart. If our goal is not bhav, then it cannot be called sadhana. Sri Narottam Das Thakur gives the example of a green mango, which is very sour, but when it ripens, it becomes sweet. In the same way, as one previous stage of bhakti matures into the next stage, it is simply a question of maturity, or that taste thickening. When prem transforms into sneha, sneha transforms into man, man transforms into pranayama, etc., the previous stage is not lost, it simply matures and develops. If I achieve sneha, my prem is not lost. If I achieve prem, then bhava-bhakti is not lost. The previous thing remains. Therefore that essence, the topmost limit of prem is called mahabhava. It is found only in the gopis. It is not even found in other parsas like Rukmini and Satyabhama. Therefore they prove, what is this uttam bhakti? That desire to strive for Krishna's happiness is divided into three stages, sadhana bhakti, bhava bhakti and prema bhakti. But all three are bhakti. Therefore in the case of the Advaitavadis headed by Sri Sankaracharya, some fault is seen in their process. The example is taken like milk. If I add some, they want nitric cotton like turmeric. Shankar. Therefore, like a 9-minute cotton is given, that is like the souring agent of turmeric, that is put into milk, tamarind. If tamarind is added to milk, then that milk transforms to yogurt. That process is irreversible. But bhakti is not like this. The Naivindikaran and the Kudu. Therefore, what is Rati? Rati is the essence of the Nidhi Shakti. Therefore, Sri Rupa Goswami has described Sudha Sattva Visheshattva Prema Suryamsa Samrupa. Therefore, what is Sudha Sattva? What is Visheshattva? You should understand. We should understand that ragatmik, that pure devotion is always present in the hearts of the ragatmik devotees who are situated in Goloka Vrindavan. Yes. When by that mercy, that nitya siddha bhava enters the heart of a devotee, that is called sudha sattva. Therefore, by the achintya shakti of the Supreme Lord, the previous stage of bhakti remains as it is transformed into or thickens into the next stage and the next stage. Therefore, in bhakti, shravan, kirtan, the ninefold process of bhakti is the sadhana. But even in Gopi Bhav, when he went to Goloki Vrindavan, then shravan, kirtan, Vishnu, smaran, etc. remains. Therefore, the conclusion is bhakti is perfect because the sadhana and the sadhya remain, both remain.
Bhagavan. सर्वव्यापी अहेतु कृपालु भूयुगम तार स्वरूप भूता महाभक्ति मान शक्ति भक्ति देवियो सर्वव्यापक कोनो देश कोनो जीव कोनो समय कोनो अवस्था ते भगवान के भजन करते भक्ति करते और भक्ति देवी सर्वत्र आछे प्या और अहेतु के कृपा अतए अनंत कोटि ब्रह्मांड है चिन्मय वैकुंठ है गोलोक धाम में सर्वत्र ही भक्ति व्याप्त भगवान मथुन भक्ति सर्व वशीकार सकल के वशीभूत करते एमन की भागवते बोला हुआ है मुक्ता लीलाया विग्रह कृपा भगवंतम मुक्त पुरुषो कारण शरीर धारण करे हर भगवान के भजन करे प्रथमे बोला भैया भक्ति बिना सहाय सहायता कर्म ज्ञान योग तपस्या की कोनो फल दीते पारे भक्ति कृपा दे ही ताहते एक कर्म ज्ञान योग फल दीते पारे एही ज्ञान समस्त साधन आ समस्त साध्य अपेक्षा भक्ति परम उत्कर्षिता स्वतंत्रता स्वप्रकाशक इत्यादि प्रतिपादित एवं ग्रंथकार बोलते हैं भक्ति समस्त गुणों की सिद्ध उच्चता अथा अनंत समुद्र मैंने थोड़ी सी उसकी महिमा वर्णन किया है एक बिंदु जैसे महाप्रभु जी ने रूप के शिक्षा के आरंभ में बतलाया पारावार सिंधु पारावार शून्य गभीर भक्ति रस सिंधु तुम्हारे चखाई के कही तार एक बिंदु महाप्रभु बोलते हैं भक्ति एक असीम अनंत गभीर रस समुद्र हमी एक बिंदु धार वर्णन कर तुम्हारे रूप के चखाई के भक्ति की महिमा अनंत अद्भुत असमोत भक्ति की जब ऐसी अद्भुत महिमा है समस्त जीवों के लिए समस्त जीव मात्र भक्ति लाभ करना ही जीवन उद्देश्य हुआ उचित भक्ति के की यदि ऐसी महिमा है तो प्राणी मात्र को जीव मात्र को सबको छोड़कर अखिल चेष्टा पर आए कृष्ण भजन के लिए सब कुछ चेष्टा कर अखिल कृष्ण के लिए अखिल भोग त्याग सब भोगों का सब विषय को छोड़ो संसार का प्रति हमारा कर्तव्य है विवाह किया है बच्चे हैं बूढ़े माता पिता है हमारे कर्तव्य है ताले तुम्हें भक्ति खुशी बुझे जो तो महापुरुष गण के देखा जाए नाथ जी के आरंभ करें सुखदेव गोस्वामी हमारे महाप्रभु सब भक्त बन के देखा रूप सनातन जी के आरंभ करें महाप्रभु सब नित्यानंद सब लोग योगम देखा जाए जीवन उद्देश्य कोनो लोग श्रवण कीर्तन करे यही महिमा साधु संग छड़े दिए गृह संसार करे दुर्भागा दुर्भागा शास्त्र कुछ महा दुर्भागा जरा भक्ति जीवन उद्देश्य नहीं जो भक्ति करवो निश्चित ही शास्त्रे तारा साधु संग करें तो साधु संग किंतु कोनो कथा तारा हृदय मध्य प्रवेश करे साधु संग होले ही होवे माने थाकले ही होवे बोला है ना जे माता ते की थाके उकुन वो भी तो साधु के शरीर सिर में है तो साधु संग करता इन्हें सब जो साधु संग का फल क्या है साधु संग कर करके वैराग्य जो होगा असब तत्व ज्ञान अपने आप हो जाएगा निश्चित और यदि नहीं हुआ सुना नहीं बात हृदय उनकी विचार शक्ति निपुण नहीं है तादेव विचार शक्ति निपुण न तादेव विवेक शक्ति अभाव यहां तक कि तादेव मनुष्य विकास भाई অবের থেকে কি গাদা গাদি করো? চক্রবর্তী ঠাকুর বলছে, অর্থাৎ মনুষ্য আকার হইলে কি হয়, করহ ভূতের কার্য। আরে আকার কি হবে, বস্তুত তারা পশু, আর পশুর মধ্যে গাধা, এমন সাধারণ বলছেন। এখানে কেবল গ্রন্থকারের মত নয়, শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়ে তিনি বলছেন, পুমান বিরজ্জে বিনা পশু না, পুমান বিরজ্জে দু জায়গাতে বলা হয়েছে। একটা তা বলা হয়েছে পরীক্ষিত মহারাজ কে সুখদেব গোস্বামী বলছেন, কহুত্তম শ্লোক না দুবার বিরজ্জে বিনা পশু বিনা। আর গুরু প্রাপ্ত হয়ে, শনি প্রাপ্ত হয়ে